क्या है और क्या नहीं है?
जब से आप गए नमाज पढ़ने के लिए उसने क्लीन अप का काम शुरू कर दिया है।
क्या?
इन 6 दिनों में वो घर से बाहर नहीं निकला है। इस दौरान उसने अपनी किसी आईडी से कोई मैसेज भी नहीं दिया है। हत्ता दूसरों के मैसेज भी उसने नहीं देखे, यहाँ तक कि नौशीन के मैसेज भी।
जैसे वो खुद गया हो तन्हाई में, एक किस्म की तन्हाई का मरहला।
नजरें इससे न उठाना, इम्कान पाया जाता है कि साफ करने के बाद अपने आप को आजमाने के लिए वो बाग में चला जाए।
बहादुरी का क्या होगा?
फिलहाल जब तक हमें मीर के काम का पता न चले बेहतर है कि वो वादे की जगह पर जाया करें।
मैंने उसको मार दिया।
ये झूठ के आखिरी धब्बे हैं जो तुम्हारे हाथों से मिट रहे हैं। तुमने अपने सौतेले बाप को कत्ल नहीं किया राना, झूठ को कत्ल किया है। तुमने अपने काबिल होने का मुजाहरा किया है। तुम रिहाई तक पहुंच गई हो, अब सिर्फ रह गया है कि तुम पाकीज़ा हो जाओ। 40 दिनों के बाद नई दुनिया के दरवाजे तुम्हारे सामने खुल जाएंगे। अपना मोबाइल मुझे दे दो। दो मुझे। अब इन हाथ पांव बांधने वाली चीज़ों को तुम्हें ज़रूरत नहीं है।
नौशीन अब फिरके के चिल्ला कची के कमरे में चली गई है।
घर आज रात से हमारे कंट्रोल में रहेगा।
घर से नजरें न उठाएं। नौशीन ने चिल्ला कची की मुद्दत काटने के लिए जरूरी तालीमात हासिल कर ली हैं। उसको मालूम है कि घर में कैमरे लगे हुए हैं। हमें इंतजार करना पड़ेगा ताकि देखें कि अमीर बाग से रब्ता करेगा या नहीं।
मैं चाहता था कि मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी रहे। इस दिन का बहुत दिनों से इंतजार था मेरे लिए। कई दिन और कई रातें इस लम्हे की उम्मीद के साथ गुजर गईं। रिहा होने का वक्त है। मैं 7 अफराद का आईना रहा हूं। राना 7वां तोहफा थी। अब तो मेरी दावत का टाइम है।
वो खुदकुशी करना चाहता है। जाएं घर में, जाएं फौरन, जाएं घर में। हालात का ख्याल रखें।
जी सर।
इस पुरशुको तकरीब के लिए मैंने अपने बेहतरीन कपड़े पहने हैं। बहरहाल मुझे भी बुलाया गया है। कैसे दिन और कैसी रातें थी कि मैं इस लम्हे की हसरत में होता था।
शुक्रिया की
मारफत की गर्मी बख्शने वाला सूरज।
शुक्रिया की मुझे दोबारा जिंदगी बख्शी।
बुझने वाला नहीं है।
शुक्रिया की मुझे दोबारा जिंदगी बख्शी।
मारफत की गर्मी बख्शने वाला सूरज बुझने वाला नहीं है।
मैं किसी को भी नहीं जानता हूं।
हत्या के एक फर्द को भी नहीं? मुर्तजा, मरियम, बहारा, नाजनीन, लेला, चकावक, अफरा, फरिश्ता, राना, किसी को भी नहीं?
नहीं जानता।
नहीं जानते हो? लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूं।
मैं नहीं समझ रहा हूं कि आप क्या कह रहे हैं।
तुम्हें समझना भी नहीं चाहिए, क्योंकि शायद तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूं।
जो शख्स सादत की राह को किसी और के लिए बंद कर दे वो दुश्मन है।
सादत की राह या खुदकुशी की?
आपने एक पुरशुकोर पैदाइश का सद्देबाप किया है।
जनाब बहनाम अरगवान।
बहनाम अरगवान मर गया है। मैं अपने नए नाम के साथ पैदा हुआ हूं, अमीर।
इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, एक मोतबर यूनिवर्सिटी से तालीम मुकम्मल करने वाला खुदकुशी को कह रहा है सआदत।
वो इल्म नहीं था। मैंने अपना टाइम जहालत के लिए जाया किया है।
अजीब है। ये बताओ, तुम लोगों को हासिल क्या होता है अल्फाज के मानी बदलने से? हाँ, इल्म को तो तुम कहते हो जहालत, खुदकुशी को कहते हो पैदाइश, कातिल का नाम रखते हो निजात दहंदा, मकतूल को कहते हो रिहाई पाने वाला, इंसानों को चार दीवारी के अंदर कैद करने को तुम कहते हो पाक करने का चिल्ला, और अंधेरे को रोशनी, अलबत्ता इन्हितात को भी परवाज। हर चीज के लिए तुम लोग एक लफ्ज बनाते हो। अब तक तुमने सोचा है कि क्यों तुम्हें और तुम्हारी तरह के लोगों को कहते हैं फिरके कपेरो? क्योंकि अल्फाज के मानी बदल कर तुम नेकी और बुराई की जगहों को तब्दील करते हो। तुमने अपने आप से कभी पूछा है कि उन 7 अफराद के बाद जिनको तुमने खुरो सब्जा के लिए इंट्रोड्यूस किया है, तुम्हें अपना ही पता क्यों काटना चाहिए?
मैं सवाल नहीं करता हूं। मुझे अपने आप को इजी रखना था ताकि आप जैसे लोगों की तरह मेरी जिंदगी ना हो।
वो शख्स जिसने ये बातें तुम्हारे दिमाग में डाली हैं, इसके बाद के तुमने लोगों को हकीकत तक पहुंचाया, क्यों वो अपने आप को इजी नहीं करता है? अच्छा, फर्ज करो इससे पहले कि एक आईना तुम्हारे रास्ते में जाहिर हो और तुम्हें खुरो सब्जा फिरके की तरह रागिब कराए, तुम इन लोगों के अंजाम के बारे में मतलब हो सकते थे और जो बाग में फंस गए हैं, तो यकीनन तुम इन पर फिक्री जमूत का इल्जाम लगाते, क्योंकि वो लोग तैयार हो गए अपनी पूरी जमा पूंजी किसी मालिक को देकर खुद इसके गुलाम बन जाएं। नौजवान, ये कैसा बाग है कि जिसमें खुदा और इंसान ही नहीं है?
उनके बदले सूरज वहां है।
सूरज है, सूरज है। सूरज है हाँ? जरूरत है कि तुम लोगों का तारुफ कराएं या तुम एक दूसरे को जानते हो?
मैं इस खातून को नहीं जानता।
तुम उन सब लोगों को जिनके लिए तुम आईना थे इतनी जल्दी भूल जाते हो क्या?
एक बार मैंने कह दिया कि मैं किसी को नहीं जानता।
लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ।
झूठ बोल रही है।
मैं बहुत अरसा हो रहा है कि झूठ नहीं बोलती हूँ बहना मरगवान, ना अपने आप से और ना किसी और से। पहले झूठ कहा करती थी,
मैं जानता हूं तुम्हें डराया गया है। किसी चीज से भी मत डरो, ये मत सोचो कि ये इंतहा है।
इत्तेफाक से यहां इब्तिदा है।
इनके प्रोपेगेंडों से खुश मत हो जाओ। मुझे और तुम्हें तो पता है कि इस दुनिया की हकीकत क्या है। हमने हकीकी रोशनी को देख लिया है।
मैंने कुछ नहीं देखा है, तुमने भी नहीं देखा है।
तुम उनको अपने अंधेरों में कत्ल करने मत दो। तुम आईना हो, अपने आप को तोड़ने मत दो फरिश्ता।
मेरा बस एक नाम है, लैला।
मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा जानता हूँ।
मैं भी तुम्हें तुमसे ज्यादा बेहतर जानता
हूँ। तुम्हारे बातिन में एक फरिश्ता है, उसे तुम्हारी जगह पर सोचने दो। इनसे बात मत करो, इनके साथ ताउन ना करो, सिर्फ रोशनी के सहारे तुम आगे चलो।
मेरे कान इन खूबसूरत बातों से पक गए हैं।
तुम्हें क्या हुआ है फरिश्ता?
मुझे मत कहो फरिश्ता, आईना, सूरज, रोशनी। मैंने खुद ये खूबसूरत झूठी बातें बहुत सबको बताई हैं। मुझे उस रास्ते पर मत जाओ जहां दूसरों को मैं खुद लेकर गई
थी। तुम रास्ता भूल गई हो, मुझे तुम्हारी मदद करने दो।
मुझे तुम्हारी मदद करने दो, एक बार ही सही, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। मेरी तरफ देखो, अपना सर ऊपर करो, मेरी तरफ देखो। देखो इस लड़की को जो किसी दिन सोचती थी, तुमने इस दुनिया के दरवाजे उसके सामने खोल दिए हैं।
क्या मैंने नहीं खोला?
बात मत करो, सुनो। मेरे आईने में अपने आप को तलाश करो। मैंने खुदा और दीन और जिंदगी और घर और लोगों और माँ बाप और अपनी हर चीज को खैराबाद कह दिया तुम्हारी खातिर, तुम्हारे नगमों के तरह नुमा आशिकाना वादों, हिदायत की रोशनी, सूरज और इश्क की खातिर मुझे क्या मिला?
तुम फरिश्ता बन गई हो। उस लैला को जो अफसरदा हो गई थी और दुनिया में खत्म हो गई थी, तुमने मार दिया, हमने मिलकर मार दिया।
हाँ, तुम मेरा कातिल हो अमीर। मेरे लिए अहम नहीं है कि इन साहब ने और क्या क्या काम किए हैं। मुझ जैसी कितनी लड़कियों से उसने झूठ बोला है, कितने लोगों से वादे किए हैं, कितने और लोगों को इस बाग में ले गया है। क्या आप नहीं कहते हैं कि आप यहाँ इसलिए हैं कि हमारी मदद करें, ताकि हम ये समझे कि सही औलत क्या है? अच्छा, मदद कीजिए ना, उसकी झूठी बातों की वजह से नहीं, इस वजह से कि उसने लैला को मुझे कत्ल किया है। ये और इस तरह के लोग कातिल हैं, कातिल से भी ज्यादा गिरे हुए हैं। अगर कातिल इंसान की जान निकाल देता है, तो ये लोग इंसान के पूरे वजूद को पैरों तले रौंद देते हैं।
तुम दबाव में हो, नहीं समझ रही हो।
तुम नहीं समझ रहे हो कि मैं क्या कह रही हूँ। मैं जानती हूँ कि वो तमाम झूठ जो तुमने मुझसे बोले थे, तो उसी लड़कियों से भी तुमने बोले।
झूठ नहीं थे वो, हकीकत तक लाने का एक रास्ता था वो।
ये कैसी हकीकत है, झूठ से शुरू होती है और इसका पूरा रास्ता भी सब झूठा होता है।
तुमने हकीकत को खो दिया है।
बहुत अरसा हो रहा है कि मेरे दिल में किसी के लिए हमदर्दी नहीं, میں نے سیکھ لیا تھا کہ دوسروں کی نسبت ہر قسم کی ہمدردی اور رحم دلی کو چھوڑ دوں. جو بھی مصیبت ہو میں ان کے اوپر نازل کروں اور نجات کے بہانے ان کو نابود کر دوں. میں اپنے آپ سے کہتی تھی کہ آئینہ ہوں اور جس قیمت پر بھی ممکن ہو لوگوں کو جو اندھیرے میں تھے روشنی کی طرف کھینچوں. مجھے ان سے ہمدردی نہیں تھی, لیکن اس وقت تمہارے لیے ہمدردی پیدا ہو رہی ہے. میں جانتی ہوں کہ تم گم ہو گئے ہو, اور جب تک تم نہ چاہو ملو گے نہیں.
میرے ساتھ ہمدردی کا اظہار مت کرو. تمہیں اپنے آپ کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے کہ تم میں لیاقت نہیں تھی. اس بارے میں سوچو کہ تم نے غداری کی ہے. غداری سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ تم سمجھتے ہو کہ یہ لوگ تمہیں چھوڑ دیں گے, آزادی دیں گے؟ نہیں, ابھی تم تو قیدی بنی ہو بد نصیب.
وہ سب چیزیں جو تم ایک دن میرے لیے تھے ختم ہو گئیں. لوگ جب کہیں پھنس جاتے ہیں تو اپنے آپ کو دکھاتے ہیں. کسی وقت مجھے تم سے لگاؤ تھا. اگر میں تمہارے قدم بقدم چلی تھی تو پہلے تمہاری اپنی وجہ سے تھا, اس کے بعد میں تمہاری باتوں اور شاعرانہ الفاظ کے فریب میں آئی. ہاں, میں ان میں بری طرح پھنس گئی. میں سوچتی تھی ان سوچوں کے بغیر میں کھوکھلی ہو جاؤں گی. اب سب کچھ بدل گیا ہے. جب میں سمجھ گئی تو جاگ اٹھی. میری آنکھ اس بات پر جو میں تھی, اس پر جو تم ہو, کھل گئی. میں نے اپنے آپ سے کہا, امیر کی جگہ مجھے بتانے دو تاکہ وہ بھی نجات پالے. دیکھو, تم مجھے اسیر کرنا چاہتے تھے, لیکن میں تمہاری نجات کی سوچ میں تھی.
تم نے غداری کی ان سب کے ساتھ جو تمہیں چاہتے تھے, ان سب کے ساتھ جنہوں نے تمہیں اپنے ساتھ بیٹھنے دیا. غدار.
تمہاری یہ باتیں میرے لیے غیر مؤثر ہیں. اب تم میرے لیے اہم نہیں ہو. صرف میرا دل اپنے لیے جل رہا ہے کہ میں نے کتنے عرصے سے یقین کیا دھوکا کھایا. میں پروانہ باغ آپ کو دکھاؤں گی.
پروانہ باغ؟
جھوٹی. تم دعویٰ کرتی ہو کہ اب بھی تم جھوٹ نہیں بول رہی ہو. یہ آپ لوگوں سے جھوٹ بول رہی ہے, آپ لوگوں سے کھیل رہی ہے. وہ بالکل باغ کو نہیں جانتی ہے.
میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں.
جو باغ میں جاتے ہیں سب آئینے ہیں. ان میں سے کوئی بھی باغ کی جگہ کو نہیں جانتا. وہ بند آنکھوں سے جاتے ہیں, یہ بھی بندی ہوئی آنکھوں سے گئی ہے. یہ جھوٹ بول رہی ہے. آپ کے ساتھ کھیل کھیلنا چاہتی تاکہ آپ سے تاوان لے سکے.
ہاں, میری آنکھیں بند تھیں, لیکن میں اس کو ڈھونڈ سکتی ہوں. جب تک یہ یہاں ہے میں بات نہیں کروں گی.
تو میں بات نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ میں تمہارا پول کھول دوں گا. نالائق غدار.
کہہ دے ان کو لے جائیں.
غدار.
میرے لیے اہم نہیں ہے کہ تم اور تمہارے جیسے لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں. سچ کہہ رہے ہو, میں نے غداری کی ہے, لیکن پروانہ اور خور سبزان کے ساتھ نہیں. میں نے اپنے ساتھ غداری کی ہے, لیکن اب نہیں کروں گی. نہ اپنے ساتھ, نہ خدا کے ساتھ, اور نہ ہی دوسروں کے ساتھ. ایک کھینچا ہوا چہرہ, لمبا چہرہ, ہاں اس کی آنکھیں اگلی تقریباً یہی ہے, صرف ان کی آنکھیں نیلی ہیں. اگلی تقریباً یہی اگلی والی. ایک منٹ. یہی ہے.
ज्यादा उससे मिली हो।
ज्यादातर बाग के आम जलसों में कभी मैं और अमीर और कुछ और लोग थे जो उस्ताद ने हमें इजाजत दे रखी थी कि हम जाएं।
क्यों?
वो समझ गया था कि हमारा ईमान ज्यादा मजबूत है।
वो कहां से समझा?
हम हल्का बोगोश थे, जो भी काम वो चाहता था हम कर देते थे। हमने यकीन कर लिया था कि वो सूरज ही है।
वो बाकी लोगों का क्या हुआ?
हर एक ने 7 रिहाइयों के बाद अपने आप को खत्म कर दिया। रोया मेरी 4th रिहाई थी। उसकी तबीयत ठीक है?
सुनवाई के इंतजार में है।
मैं तैयार हूं जो काम उसने किया है उसकी जिम्मेदारी कबूल करूं। मैं तैयार हूं अदालत में गवाही दूं कि मैंने उसे मजबूर किया था, मैंने उसका इरादा उसे छीन लिया।
तुमने रोया का इरादा उससे छीन लिया था और किसी और ने तुम्हारे इरादे को, लेकिन तुम्हारे खिलाफ कत्ल और डकैती का इल्जाम भी है। क्यों तुम लोग उसे कहते हो परवाना?
सब उसको इसी नाम से पुकारते थे, उस्ताद परवाना। खुरो सबजान के पुराने लोग जो अपने ज्यादातर टाइम बाग में गुजारते थे, बाग को भी कहते थे बाग परवाना। मुझे याद है एक मरतबा मैंने उससे खुद सुना है कि उससे पहले कि वो अपने सूरज की हकीकत हमारे दिलों को दिखाए और बरकत आगई का रास्ता उसको इल्हाम हो जाए, वो एक कीड़े के मानिंद था और उसके बाद जब उसने हकीकत को समझ लिया तो वो एक परवाना बन गया।
वो बाहर आया है ताकि बाकी लोगों को अंधेरे में डाल सके। तुमने क्यों सोचा कि तुम रोया को जज्ब कर सकती हो?
एक नाकाम प्यार और एक बेतुका घराना।
और तुम खुद?
मसूद नौरोजी, उम्र 64 साल, पेरिस की किसी यूनिवर्सिटी में उसने उम्रानियत पढ़ी। उसके डॉक्टरेट की थीसिस फिरकों या ग्रोहों की माशरती आसेबों से मुतालिक थी।
उसने थ्योरी का एग्जाम पेरिस में दिया है और प्रैक्टिकल तेहरान में लाया ताकि एक नेटवर्क बना सके और वही गुलामी का दौर यहाँ पर भी शुरू करे।
कुछ साल हो रहे हैं ईरान वापस आया है। एक मरतबा उसके खिलाफ केस किया गया है जाली काम करने के जुर्म में, जिसको मुद्दे साबित नहीं कर सका। अभी 3 साल हो रहे हैं, उसके कोई इत्तला नहीं है, मुल्क से बाहर भी नहीं गया है।
इस तमाम अरसे में वो बाग के तहफ्फुज में था।
उसके बैंक अकाउंट्स का कोई सुराग नहीं मिल पाया।
और अमान के इदारे की तरह के माली तहफ्फुज के जरिए से पैसे और सोने को नकद तौर पर मुल्क से बाहर मुंतकिल कर देता।
तो फिर क्यों अभी तक लैला ने उसके बारे में कोई बात नहीं की थी?
शायद अमीर के साथ मुलाकात मौसर रही है। इससे पहले वो सिर्फ अपनी निजात और अमीर से इंतकाम की सोच में थी। अमीर से मिलने के बाद लगता है कि इसने दोबारा बाहर से अपने आप को देखा है, अपने माजी को। वो समझ गई है कि जिस चीज पर इसको ईमान है और इसका दफा करती है इसकी कोई कीमत नहीं।
तो क्या बाग में लोग बंद आंखों के साथ नहीं जाते थे? वहीद को भी बंद आंखों के साथ ले जाया गया था। कैसे लैला दावा करती है कि बाग की जगह को वो जानती है?
निशानियों की रूह से।
नौशीन बहादुरी क्या होगा?
हमें सब्र करना होगा, देखना है कि फरिश्ता हमें जल्दी बाग तक पहुँचाएगी या नहीं।
अगर नहीं पहुँचाए तो
इंतजार में बैठे रहेंगे बहादुरी के चिल्ले का अरसा खत्म होने तक। देखते हैं कि किस तरह इसको बाग में ले जाते हैं।
मुझे उम्मीद है कि हम खुद बाग तक पहुंच जाएंगे।
मुझे भी उम्मीद है।
ज्यादातर वो यहाँ से मुझे बिठाते थे एक वैन के जरिए, टैक्सी वैनों से जिसकी खिड़कियों पर भी पर्दे होते थे। रास्ते का मुझे पता है, उन आवाजों के जरिए जिनको मैं सुनती थी मैं ढूंढ सकती हूँ।
तो फिर अच्छी तरह से आवाजों पर गौर करो।
जी अच्छा। मुझे याद है रास्ते के एक हिस्से में हमेशा एक किस्म की बदबू आती थी, नाले की तरह की, गंदे पानी की तरह की।
चले
रुकिए, एक मिनट यहीं रुके हैं। यही जगह थी, यही थी, हाँ यही बू थी।
यहाँ के बाद
कई मर्तबा जोहर के नजदीक हम यहाँ से गुजरते थे। मुझे याद है अजान की आवाज में सुनती थी।
जब तुम लोग बाग में होते थे तो अजान की आवाज आती थी वहाँ?
नहीं, हम उससे दूर हो जाते थे। पता नहीं, शायद मैंने तवज्जो नहीं दी।
चलो चलते हैं।
ये वो रोड है जो लैला कहती है उससे गंदे नाले की बू आती है। यहाँ यह रोड एक जहरीली सड़क तक पहुंचती है। इस रास्ते में लैला ने कुछ आवाजें सुनी। इस रास्ते में लकड़ी का काम होता है। लकड़ी का काम दरख्त का सोफे बनाने का एक वर्कशॉप है जो हमेशा मुसाफिर वैन टैक्सियां इस सड़क से मकामी मजदूरों को मुंतकिल करती है।
इसलिए उन्होंने वैन को टैक्सी के बजाय इंतखाब किया ताकि कोई शक न करे।
यहाँ पर एक मकामी मस्जिद है। लैला ने इसी मस्जिद से अजान की आवाज सुनी है। लैला के कहने के मुताबिक ट्रेन चलने की आवाज भी आ रही थी जो जायरन यहां से आ रही है। यानी रेलवे लाइन, लकड़ी का काम का रास्ता और भी सड़कें, ये सब हमको यहाँ पहुंचा देती है।
मैंने दस्तावेजात का जायजा लिया है। तमाम बागों और तमाम मकानों को मैंने चेक किया है। कोई मशकूक बात मेरे हाथ नहीं लगी।
तुम ये कहना चाहते हो कि इन चंद दिनों में लैला के साथ हमारी इल्मी सैर का कोई नतीजा नहीं निकला?
क्यों नहीं, चूंकि हम उसी के बताए हुए रास्ते की वजह से वहां पहुंचे।
हम वैन गाड़ियों की आमद और रफ्त का रास्ता नहीं रोक सकते थे क्योंकि हमें मालूम नहीं था कि उनमें सफर करने वाले कौन थे। वो समझ जाए कि हम उनको कंट्रोल कर रहे हैं,
इसलिए इम्कान पाया जाता है कि मुसाफिरों के दरमियान फिरके के अफराद भी मौजूद हों।
इस इलाके में कितने बागात और प्लाट हैं?
बहुत। अगर परवाना बाग तक पहुंचने के लिए हम तमाम बागात का जायजा लेने लगे तो इम्कान पाया जाता है कि लोगों को शक हो जाए और फिर यह बागात की तादाद इतनी ज्यादा है कि बैक वक्त हम उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते।
अच्छा, हेलीकॉप्टर के जरिए फिर तमाम इलाके की जांच पड़ताल करो।
जी सर, जरूर।
यहाँ मुझे कुछ चीजें नजर आई हैं। एक टैक्सी वैन यहाँ है और ये उसके दूसरे दिनों की तस्वीर है।
तस्वीर बड़ी करो जरा। यही बात है। ये कैसा बाग है कि एक दरख्त भी नहीं है इसके अंदर?
हमारे लिए बाग था, जन्नत का बाग। परवाना कहता था ये हम हैं जो इस बाग को जिंदगी का मफहूम देते हैं। کہتا تھا جنت وہ جگہ ہے کہ انسان ان لوگوں کے ساتھ ہو جو اس کی اپنی طرح سوچتے ہیں, اس کی اپنی طرح زندگی کی جانب دیکھتے ہیں. ہمارے لیے وہاں دنیا کی بہترین جگہ تھی. ہم اس کو کہتے تھے چمکتی ڈوریاں. ہم اس خط گھومتے تھے یہاں تک کہ رفتہ رفتہ ایک ہو جاتے تھے. ہماری روزانہ کی تقریب تھی. جب ہم تھک جاتے تھے تو وہ خدا جاتا تھا تاکہ وہ ڈوری گھمانے کو مکمل کرے.
تم لوگ اپنے آپ سے نہیں پوچھتے تھے کہ تمہیں یہ کام روزانہ کیوں کرنا چاہیے؟
نہیں, پروانہ کہتا تھا کہ یہ ڈوریاں ہمیں آپس میں جوڑ دیتی ہیں. جب وہ آتا تھا ہمارے درمیان تاکہ ڈوری مکمل ہو جائے سب خوشی سے روتے تھے. بعض اوقات کئی گھنٹے اس کا انتظار کیا جاتا تھا لیکن وہ نہیں آتا تھا کیونکہ سمجھ جاتا تھا کہ سب یکجا نہیں ہوئے. کسی کی نفسیات میں ناخالصی پائی جاتی ہے, وہ اس کی شناخت کرتا اور دوسروں سے اسے علیحدہ کر دیتا تھا. سب کو ناخالص نفسیات سے نفرت ہوتی تھی کیونکہ وہ رہائی کی ڈوریوں کو کامل ہونے نہیں دیتی تھی.
ان کاموں کے ذریعے وہ تم لوگوں کو تھکا دیتا تھا. تھکا ہوا آدمی تو سوچ بھی نہیں سکتا ہے, اور جو شخص سوچ نہ سکے فطری طور پر اس کے پاس کوئی سوال اور اعتراض بھی نہیں ہو سکتا. اور یہ بالکل وہی چیز ہے جو وہ لوگ چاہتے تھے آپ سے.
وہ ہم سے کہتا تھا ہم حقیقت کو پانے کے ذریعے جلنے والی شموں کی طرح ہو گئے اور بہتر ہے کہ ہم باغ میں ہی رہیں اور باہر کی دنیا کے اندھیرے میں واپس نہ جائیں. پھر وہ خود پروانے کی مانند ان شموں کے ارد گرد گھومتا تھا. صرف ہم کچھ آئینہ لوگ باہر چلے جاتے تھے تاکہ باقی لوگوں کو ڈھونڈیں اور پروانہ باغ کی روشنی کی طرف ان کو دعوت دیں اور ان کو باغ کے باہر کی ظلمت سے نجات دلائیں. اب میں باغ کو دیکھنا نہیں چاہتی. میں نے چار افراد کو برباد کر دیا ہے. وہ لوگ جنہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا, میں نے ان کو کھینچ کر اس باغ کے اندھیرے کی طرف لے آئی.
جو البتہ تمہارے ساتھ وہ بن جاتے ہیں پانچ افراد. یہی بات کہ تم نے مدد کی کہ ہم باغ کو ڈھونڈ نکالیں ہمارے لیے اہم ہے. مجھے امید ہے کہ دوسروں کی نجات کے ذریعے تلافی ہو جائے.